हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह गुजरात निमानी हाउस करीब 8 बजे। रुहान तैयार हो रहा था, साथ में उसकी नज़र बार बार बेड पर लेडी अनाही की तरफ जा रही थी। अनाही रात को लेट आई थी, इस वजह से अभी तक उसकी नींद नहीं खुली थी और रुहान ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। कुछ देर बाद वो शुगर का फूड लिए उसके कमरे में गया और उसने जब देखा कि कमरा बाहर से लॉक है तो उसकी आंखें छोटी हो गई। फिर उसने एक नज़र फिर से अनाही की तरफ देखा, क्योंकि अनाही के अलावा ये सब कुछ कोई नहीं कर सकता था। रुहान ने फिर धीरे से कहा, मेरी शुगर बेबी से इतनी भी क्या प्रॉब्लम है जो उसको कमरे में ही बंद कर दिया। उसके बाद रुहान ने गहरी सांस लेते हुए दरवाज़ा खोला, पर सामने का नज़ारा देखकर वो 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि सामने शुगर बच्चे की जगह वो काला बिल्ला बैठा था। पर उसे देखकर रूहानी गुस्से से कहा, ये कहाँ से आया है? रुहान ने कमरे के अंदर अपने कदम बैठाए तो उसे अपने बिस्तर पर लेटी शुगर भी देख गई, जो खुद से ही खेल रही थी, कभी इधर करवट बदल रही थी तो कभी उधर। इस कमरे में उसके खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने थे जिनको उसने पूरे कमरे में बिखर रखा था। रुहान उसके पास गया और वो खाना उसके सामने रखते हुए उसे कल बिल्ले को तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, ये कहाँ से आया है शुगर बेबी? इसको कौन लेकर आया है? रुहान ने हाथ में एक स्टिक लेते हुए उसे कल बिल्ले को डराया तो वो बेचारा दौड़कर अंदर आ गया, पर वो बाहर जाने के बजाय बेड पर चढ़ गया, जिससे अनाही डरते हुए उठकर बैठ गई। वो अभी भी नींद में थी, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है, बताओ मुझे। रुहान जल्दी से अंदर आते हुए बोला, मैडम जी, ये बस एक बिल्ला है, आप डर क्यों रही हैं? अनाही घबराकर सामने देखा और उसे कल बिल्ले को देखकर अनाही ने चैन की सांस लेते हुए कहा, मैं तो डर ही गई थी। रुहान ने फिर आंखें छोटी करते हुए कहा, पता नहीं ये बिल्ला कहाँ से आ गया है, मैंने तो सिर्फ शुगर बेबी को अडॉप्ट किया था, ऐसा बिल्ला तो मैंने पहली बार देखा है। अनाही ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों, सिर्फ आप ही हो जो पेट रख सकते हो, ये मैं लेकर आई थी, कम हेयर कालूराम। इतना बोलकर अनाही ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाई तो वो काला बिल्ला खुश होते हुए उसके पास आ गया, जिसे देखकर रुहान को बेहद गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा, आपको मेल कैट लाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि हमारे पास पहले से शुगर बच्चे हैं, आप उसको भी तो रख सकती हैं। अनाही ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे आपकी शुगर बेबी बिल्कुल पसंद नहीं है, और ही इज़ माई फेवरेट, मुझे तो इसी के साथ रहना पसंद है, आप जाओ अपनी शुगर बेबी के पास और मैं रहूंगी कालूराम के पास। क्यों कालूराम, कैसे हो तुम, रात को कोई तकलीफ तो नहीं दी ना उस सफ़ेदी की चमकार ने? वो बिल्ला खुश होते हुए अपनी पूंछ हिलाकर अनाही के हाथ पर जैसे ही अपनी जेब फेरता है, अनाही का चेहरा गुस्से में भर जाता है तो ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए उसे बिल्ली का पंजा पकड़कर भेजते हुए बोलती है, नहीं बेटा, इतना प्यार भी नहीं चाहिए मुझे। फिर वो तिरछी नज़रों से रुहान को देखती है, जिसे वो बिल्ला बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो उसकी शुगर बच्चे और उसकी मैडम जी दोनों का फेवरेट बन गया था। भगवान ने अपनी माँ ही मन कहा, ऐसे आज यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, मैं भी देखता हूँ यहाँ कैसे रहता है। पर अब रुहान से अनाही और उसे कालूराम की गरीबी देखी भी नहीं जा रही थी, इसलिए वो तेज़ कदमों से कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही अनाही ने तेज़ी से उसे बिल को खुद से दूर किया और फिर बेड से उठाते हुए बोली, क्या पागलों की तरह सुबह सुबह नींद खराब कर दी? एक तो रात को मैं वैसे ही वेदांत जी की वजह से लेट सोई थी। नहीं नहीं, जैसे ये बोला उसे याद आया कि उसने वेदांत को किस हाल में छोड़ा था। वो लगभग दौड़ते हुए बाथरूम में गई और अगले 10 मिनट में ही फ्रेश होकर बाहर आई। उसने एक ब्लू कलर का कुर्ता और उसके नीचे ब्लू कलर की पैंट पहनी थी। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए जल्दी से सिंदूर लगाकर माथे पर बिंदी लगाती है और उसे स्पीड से फिर कमरे से बाहर चली जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, कहीं वेदांत ने विहा के साथ कुछ ना किया हो, पर कहीं ना कहीं उसे वेदांत पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो रात को भी उसे विहा के पास छोड़कर आई थी। वहीं विहा की आंखें भी कब की खुल चुकी थीं, पर वो बालकनी में रेलिंग में लगे पिलर से अपनी पीठ लगाकर बैठी थी और एक तक आसमान को देख रही थी। उसके दिलो दिमाग से रात वाला वेदांत निकल नहीं रहा था, उसे बार बार घबराहट सी हो रही थी, लेकिन बाहर चलती ठंडी हवाओं से सुकून दे रही थी, इसीलिए उसका मन नहीं किया कि वो बालकनी का दरवाज़ा खोल दे, ना ही उसने ये ध्यान दिया कि वेदांत अभी तक फर्श पर लेटा हुआ था, शायद उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई थी। कुछ देर बाद अनाही हाथ में एक ट्रे लिए विहा के कमरे का दरवाज़ा लॉक करती है तो उसे महसूस होता है कि दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ है, क्योंकि वहाँ निहित को दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था। नहीं धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है, बेड और साफा दोनों खाली थाली देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसने अपने हाथ में पड़ी ट्रे को वहीं टेबल पर रखा और कमरे में नजर घुमाई तो उसे बालकनी के दरवाजे के पास लेटे वेदांत दिखा और वो तेज कदमों से उसके पास जाकर शौक होते हुए बोली, फिर रांची, अब फर्श पर क्यों सो रहे हैं? इतना बोलकर उसने वेदांत का कंधा हिलाते हुए उसे उठाया। वेदांत ने भी कम से आकर अपनी आंखें खोली और सामने अनाही को देखकर उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि आज मुझे मत उठाना, मीटिंग कब की खत्म हो चुकी है, आज ऑफिस से छुट्टी है मेरी, मुझे सोने दो। अनाही ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ये सब लोग आधी नींद में बात करते हैं क्या? उसने फिर से वेदांत को जगाते हुए कहा, पर अब फर्श पर क्यों सो रहे हैं? वहाँ लंबा चौड़ा बेड है, वहाँ जाकर सो जाइए। बनाई की ये बात सुनकर वेदांत चौंक गया, फूट जल्दी से उठकर बैठते हुए बोला, मैं फर्श पर क्यों सो रहा हूँ? अचानक ही उसे रात के फ्लैशबैक याद आने लगे और उसने घबराते हुए उठकर कहा, टोमेटो कहाँ है? वो रात को अनाही ने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, वो मुझे भी नहीं देख रही है भैया, पता नहीं कहाँ है, शायद बाहर होगी, दरवाज़ा खुला पड़ा था, हो सकता है वो आज जल्दी उठ गई हो। वेदांत ने जल्दी से बालकनी का दरवाज़ा नोक किया। विहा, जो शांत बैठी थी, इस शोर से उसने मुड़कर बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ वेदांत के साथ अनाही को देखकर वो जल्दी से उठती हुई दरवाज़ा खोल देती है और फिर झट से अनाही के गले लग जाती है। अनाही उसके ऐसे गले लगने से एकदम स्तब्ध रह जाती है। फिर वो आहिस्ता से अपना हाथ विहा के सर पर फेरते हुए बोलती है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? विहा उस पर अपनी पकड़ कसते हुए सिसक पड़ती है। उसे ऐसे रोता देखकर अनाही ने एक नज़र वेदांत को देखा जो आंखों में शर्मिंदगी लिए खड़ा था। ऊपर से वेदांत का सर भी दर्द से फट रहा था। अनाही इस सिचुएशन को समझ सकती थी, इसलिए उसने वेदांत से कहा, वहाँ टेबल पर ट्रे में आपके लिए नींबू पानी रखा है, वो पी लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। और फिर वो विहा की पीठ सहलाते हुए बोलती है, रोना बंद करोगी हाँ? क्या वेदांत जी ने तुम्हें कुछ किया है? तुम्हें कहीं चोट लगी है? दिखाओ मुझे। इतना बोलकर अनाही उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो वहाँ जबरदस्ती उसके गले लगाते हुए बोलती है, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, पर उनका बिहेवियर रात को बहुत बुरा था, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मम्मी के पास जाना है, प्लीज।
रूहान ने गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रखते हुए कहा, ठीक है, चले जाना घर, रोना तो बंद करो, सुबह सुबह रोना अच्छा नहीं होता है, देखो मेरी तरफ। इतना बोलकर भी उसका चेहरा पढ़ते हुए अपनी तरफ कर दिया और फिर आहिस्ता से उसका फोरहेड चूमते हुए बोलती है, अभी चुप हो जाओ हाँ, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर तुम रो क्यों रही हो? घर जाना है तो सीधे सीधे बोलो कि मुझे मम्मी से मिलना है, रोने से थोड़ी कुछ हल हो जाएगा।